ऊना में 29 जनवरी 67 की तीसरी पीठ के मध्याह्न में बात चल रही थी, जो पहले आएंगे वो जरूर इतने जास्ती ताकत वाले होंगे। कहाँ आएंगे? नई दुनिया में जो आएंगे पहले पहले ज्यादा पावर वाले होंगे, और यज्ञ के आदि में भी जो पहले पहले आए होंगे वो ज्यादा पावर वाले होंगे। पाठधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना, भिन्न भिन्न माना अलग अलग ताकत वाले होते हैं ना। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को ही मिला हुआ है, विदेशियों को नहीं मिला हुआ है। क्यों?
विलन का पार्ट
है, उनका विलियन का पार्ट है। वो आज में नहीं आते,
आता है फिर भी।
राम के आने के साथ साथ माया रावण नहीं आती है,
आती है।
है? फिर जो पहले पहले आएंगे वो जरूर इतने ताकत वाले होंगे। भिन्न भिन्न पार्टधारी होते हैं, हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को ही मिला हुआ है। दो में से एक का विदेशी को मिल जाता, हीरो का पार्ट भारतवासी को मिल जाता, हीरोइन का पार्ट विदेशी को मिल जाता। क्यों? भारतवासियों को ही हीरो हीरोइन का पार्ट क्यों मिला हुआ है? क्योंकि हीरा जास्ती चमक मारता है, और जो भारत देश में चमक है प्योरिटी की, वो और कोई देश में प्योरिटी की चमक नहीं हो सकती। राज लेना और गवाना ये तुम भारतवासियों का पार्ट है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो श्रीमत का आधार लेकर। तुमको कितना बल मिलता है, और माया भी बहुत जबरदस्त है, चलते चलते कितना धोखा दे देती है। बाबा तो प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो, अगर किसी को दुख देंगे तो क्या होगा? है हम ब्राह्मण मरेंगे। दुखी होकर मरेंगे किसके सामने बोला? बच्चों के सामने बोला। तो जिन बच्चों के सामने बोलते हैं वो मरेंगे है? नहीं। अरे जीते जी मरेंगे तो, लेकिन सहज सहज नहीं मर पाएंगे। अभी ये आदत है सब प्रकार की मिटानी चाहिए। गंदी से गंदी आदत है विषय सागर में गोते खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, कितनी बिचारियां मार खाती हैं, माथा मारते हैं। कोई कोई तो बच्चों को कह देंगे तुम भले पवित्र बनो, अरे बच्चों को तो बाद में बनाओ, पहले खुद तो पवित्र बनो। तुम्हारे संस्कार बच्चों में भी जावेंगे। बच्ची दे दी खर्च आदि के बोझ से, खर्चे आदि का बोझ और भी छूट जाएगा। समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या हो, घर भी कोई को सुखी मिलता है या नहीं मिलता है। आजकल खर्चे भी तो देखो बहुत लगते हैं। गरीब लोग तो बाबा को झट कन्या दे देते हैं। है। और साहूकार लोग
सोच करते
क्यों?
उनके पास पैसा है,
उनको लोग लाज बहुत बहुत सताती है, कोई कोई को फिर मोह रहता है। आगे एक भीलनी आती थी, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया, किन्होंने? उनके परिवार वालों ने उनको ज्ञान में नहीं आने दिया, क्योंकि उनको जादू का डर हो गया था। अब भगवान को तो जादूगर भी कहते हैं ना, रामदिल भी भगवान को ही कहेंगे। रहम दिल वो है जो बेरहमी से छोड़ा भी, और बेरहम है रावण, स्त्री पुरुष एक दो पर काम कटा चलाते हैं, सबसे जास्ती बेरहमी ये है दुनिया में, से बेरहमी का किसी को पता नहीं है। एक दो को छुरी मार करके खून निकालते रहते हैं, नरक की कीड़े बन पड़े। बाप ने देखो कैसे कैसे नाम रखे हैं, भ्रमरी और कीड़े, ये मिसाल भी बाप इसी समय देते हैं। पहले पहले बाप ने समझाया भ्रमरी का मिसाल दो, सर्प का मिसाल दो, फिर बाद में भक्ति मार्ग वालों ने इनकी कॉपी की है। पहले पहले तो बाप ही समझाते हैं ना, पहले तो ज्ञान है, ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। ज्ञान पहले क्यों? ज्ञान आवेगा तो भक्ति से वैराग हो जाएगा। भक्ति से वैराग करना होता है, इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग ये ठीक है। बाप तुमको बेहद का अथवा पुरानी सारी दुनिया का वैराग कराते हैं, सन्यासी दूसरे घरवार का वैराग कराते हैं, ये भी उनका ड्रामा मिनूट है। मनुष्य की बुद्धि में ये बैठता नहीं है कि भारत 100% सॉल्वेंट था, अभी भारत 100% इनसॉल्वेंट बन गया है। अभी फिर से हिस्ट्री मस्ट रिपीट, कब अकाल मृत्यु नहीं होता है, इन सब बातों की धारणा बहुत कम लोगों को रहती है। जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं वो ही साहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन भर बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया बच्चों को याद नहीं करने देती। बाप कहते हैं सतोपटान बनना है, तो चलते फिरते खाते पीते मुझे याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? बहुतों को माया के तूफान आते हैं, समझते हैं ये तो होंगे ड्रामा में, इन माया के तूफानों की भी नूद है, फिर भी स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होगी। अच्छा, ओम शांति। ये है 29 जनवरी 1967 का प्रातः क्लास, बचे हुए पॉइंट्स। सदैव नई दुनिया तो नहीं रह सकती है, ऐसे भी कहते हैं हमेशा स्वर्ग ही क्यों न बना रहे, ये नरक की दुख की दुनिया आती ही क्यों है? तो कहते सदैव एक जैसा समय नहीं रह सकता, फिर ड्रामा काय का, खेल काय का, हमेशा रात ही रात रहे, हमेशा दिन ही दिन रहे, ये हो नहीं सकता। दुख ही दुख की दुनिया रहे या सुखी ही सुख बना रहे, चक्कर को फिरना जरूर है, तो नीचे जरूर आएंगे। हर एक चीज नई होती है फिर पुरानी जरूर होती है, ऐसी तो दुनिया की कोई चीज नहीं है जो नई की नई बनी रहे। क्या? क्यों? कोई चीज नहीं। शिव बाबा है, शिव बाबा इस दुनिया की चीज थोड़ी है, उसमें शिव जो असली आत्मा है वो तो परम नाम की है। जिसके लिए बाबा कहा गया है वो नया और पुराना होता है। तो हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है। मनुष्य तो जैसे तबाहियों में सर जो आता है सो बकते रहते हैं, बेगर अर्थ बकने वाले को चरिया कहा जाता है। राम की सीता चुराई गई, राम ने बंदरों की सेना ली, ये सब चरियाई बैठ करके बनाई है। बाप आकर के गुलगुल बनाते हैं, किसने बनाई ये चरियाई? कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, तो वो व्यास भी ऐसा चरिया निकला ना जिसने इतनी चरियाई बैठ लिखी है। अभी इन बातों पर वंडर लगता है। अच्छा ओम शांति। कोई और मुरली की पॉइंट्स? अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग क्या है? कृष्ण के भक्त कृष्ण के आगे धूप जगावेंगे तो राम के भक्त राम का नाम नाक बंद कर देते हैं। इनकी धूप कहीं हमारे भगवान की है अंदर न चली जाए। ये भक्ति मार्ग की बात बार बार बाबा क्यों बोलते हैं? है? इसकी शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? कोई राम के पुजारी और कोई कृष्ण के पुजारी। जो कृष्ण के पुजारी है वो कहते हैं कृष्ण ही गीता का भगवान है, राम के पुजारी है वो कहते राम ही गीता का साकार भगवान है और कोई दूसरा नहीं, नहीं हो सकता। तो एक दूसरे में लड़ाई हो जाती है। कितने चरिए हैं, कमाल की बातें हैं ना। शास्त्र तो ऐसे बनाए हैं जिनमें झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। झूठ को ऐसे पकड़ करके बैठते हैं तो छोड़ते ही नहीं। देखो व्यास ने क्या बैठ बनाया है, सब मनुष्यों का बेड़ा ही गर्क कर दिया। बेड़ा बेड़ा मन ये शरीर रूपी जो नैया है वो विषय सागर में बैठ करके गोते खा रही है। बेड़ा पूरा ही गर्क हुआ है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, सबकी दुर्गति हो गई है, बाप आकर के सदगति करते हैं। ये भी समझते नहीं है कि रावण ने पूरी दुर्गति की है। भक्ति मार्ग वाले हैं चलिए, चलियों को सच बताएं तो भी बिगड़ पड़ेंगे। उनको सच कहें सच बात बताओ तो उनको मिर्ची लगती है। हम कहते हैं हम बाप की बातें तुमको बताते हैं, ये बाप हमें समझाते हैं, तो इस पर भी उनको मिर्ची लगती है कि इनको बाप कहां से मिल गया, इनको भगवान कैसे मिल जाएगा। अब तुम जानते हो ये भक्त ये गुरु गुसाई बड़े बड़े एप्स हैं, कितनी पुस्तकें बैठ बनाई है, उन पुस्तकों में ग्लानी ही ग्लानी लिखी हुई है और कितना शास्त्रों में रोला मचा दिया। शास्त्र बनाने वाले को गालियां आलियां देकर के मुरली बंद कर दी। 31-67 का रात्रि क्लास याद की यात्रा से बाप को याद करना है और जाना है फिर आना है, बच्चों को जाना है फिर आना है, पाठ बजाने के लिए घर को और बादशाही को याद करना है। शरीर होते कर्म भी तो करना ही पड़ता है, जब तक यहां है कर्म भी करना है, है? माउंट आबू में जाके नहीं बैठेंगे है? अरे शांति धाम नहीं बनाएंगे, परम धाम को सृष्टि को उतारेंगे नहीं उतारेंगे। तो वहां भी धंधा दोरी करेंगे
नहीं।
फिर जब तक यहाँ है कर्म भी करना है, यहाँ है माने क्या इस दुनिया में जब तक है तब तक कर्म करना पड़े, क्योंकि दुनिया के संग कर्म लगता है। जो भी मिले उनको घर का और राजधानी का रास्ता बताना है, घर को और राजधानी को याद करना है, और शरीर निर्वाहार्थ काम भी करना है। जब घर चले जाएंगे तो शरीर निर्वाह की कोई चिंता नहीं रहेगी। आबू अब्बा का घर कौन सा है? माउंट आबू। पर जाने में देर क्यों है?
अकाउंट को क्लोज करना है।
अकाउंट क्लोज करना है, तिरसठ जन्मों का हिसाब किताब है वो क्लोज करना है। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बने हैं, स्वभाव संस्कार को नहीं सुधारा है, तब तक नई दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। जनवरी 67 का प्रातः क्लास, रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी शिव भगवान उवाच, रूहानी शिव भगवान उवाच और जिस्मानी शिव भगवान उवाच, ये कैसे? शिव भगवान उवाच हमेशा रूहानी होता है या शिव भगवान उवाच जिस्मानी भी होता है? जिस्मानी नहीं होता है क्यों? दुनिया की हर चीज सब तमो प्रधान बनती है सतो प्रधान से, तो शिव जब वो वाच करता है तो सदैव सतो प्रधान ही बोलता है, कभी तमो प्रधान नहीं बोलता होगा। क्यों? वो दुनिया में नहीं आता। बाप को तो बाप ही कहा जाता है, बाप को कभी बच्चा नहीं कहा जाता है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप से पैदा होते ही और बाबा बाबा तो कहते ही है। जन्म जन्मांतर तुम कुकवंशावली बत्ते रहे और अब हुए हो तुम मुखवंशावली। सत्युग में मुखवंशावली नहीं कहे जाते। क्यों सत्युग में जो बच्चों की पैदाइश होती है मुख्य प्यार से नहीं होती, होती तो है, फिर मुखवंशावली क्यों नहीं कहे जाते? वहां उससे निकला हुआ ज्ञान नहीं होता है। ये एक ही संगम युग है जबकि तुम शिव बाबा को जान गए हो कि हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा मुखवंशावली है। बाबा ने मुख से कहा कि तुम हमारे बच्चे हो, मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूं और तुम सब रूहे हो। अब ये नॉलेज तुम्हारे बिना कोई समझ नहीं सकते। तुम्हारे बिना मन जो भी तुम आत्मिक स्टेज में रहने वाले 84 जन्म लेने वाले मनुष्य सो देवता बनने वाले बच्चे हो, उनके अलावा और कोई इन बातों की गहराई को नहीं समझ सकता। तुम सत्युग से लेकर के कुकवंशावली बनते हो, परंतु वहां पवित्र कुकवंशावली थे और जब से रावण राज आया है तो कुकवंशावली बने हो, तो वो है पवित्र कुकवंशावली। पवित्रता का वर्षा आधा कर्म के लिए देते हो। इन सब बातों को अगर याद नहीं करते गए रहेंगे तो इतना उमंग उत्साह और खुशी में नहीं आवेंगे। बच्चों को बाप को याद कर पावन सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान को पावन और तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। मनुष्य गाते भी रहते हैं पतित पावन सीताराम, वो तो ऐसे ही कह देते हैं। कैसे कह देते हैं? भक्ति मार्ग में बिना सोचे समझे ऐसे ही कह देते हैं पतित पावन सीताराम। ये थोड़े ही समझते हैं कि सीता को पहले नाम क्यों दे दिया और राम को बाद में नाम क्यों दे दिया। सीता और राम दोनों को क्यों पतित पावन कहते हैं, न खुद को पतित समझते न यथार्थ रीति पावन बनाने वाले को जानते हैं। पतित पावन सीताराम कहते हैं तो किसको पतित पावन समझते हैं, देहधारी को पतित पावन समझ लेते हैं। ये थोड़े बुद्धि में आता है कि उस देहधारी में वो निराकार शिव प्रवेश करके पतितों को पावन बनाता है। तुम समझते हो ये सब बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। भले कितने भी बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, कितनी धुन लगाते हैं पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे यथार्थ से जानते हो ये पतित तमो प्रधान दुनिया है, इनको कलयुग कहा जाता है। क्यों? जब पतित होते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करना माना कलह कलेश की दुनिया कलयुग बन जाती है। सत्युगी था ये, जरा सी बात भी किसी की बुद्धि में नहीं आती है कि पहले सत्य का युग था और अभी झूठ का युग है। अभी तुम्हारे मुंह से ऐसे नहीं निकलेगा। कैसे? पतित पावन सीताराम क्यों? पतित पावन सीताराम ये मुख से नहीं निकलेगा, इसलिए मुख से नहीं निकलेगा कि वो मनुष्य तो बिना बिगर अर्थ गाते रहते हैं। हमारी बुद्धि में तो अभी बैठा है कि पतितों को पावन बनाने वाला शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो पहले पहले राम और सीता पतित से पावन बनते हैं। वो तो बिगर अर्थ गाते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, बाप कितना गुप्त है, जिसको याद करने में भी कितनी मेहनत लगती है। बाप भी समझते हैं, तुम भी समझते हो, आगे कोई को पता नहीं था कि हम आत्मा है। हम आत्मा पूरे 84 जन्म लेते हैं और जो पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं वो आत्मा नहीं है। टिकते नहीं है, जो आत्म की स्थिति में पूरे पक्के टिकते नहीं है वो फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कन्वर्ट होने का कारण क्या हुआ? पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, देह अभिमानी के देह अभिमानी ही बने रह गए। तुम तो समझते हो उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, इनकी बुद्धि में जो पूरे 84 जन्म लेने वाली होगी। बाकी कई तो सिर्फ बाहर से ही चित्र देख करके बोलते हैं, इन्होंने तो कृष्ण के पांव में नरक दिखाया है, बस सिर्फ चित्र देखा कि पांव में नरक दिखा दिया तो चले जाते हैं। बात कुछ भी नहीं समझते तो समझा जाता है इस घराने का नहीं है। कृष्ण के चित्र में नरक दिखाया गया पांव में और हाथ में स्वर्ग दिखाया गया, तो समझना चाहिए ना कि हाथ में स्वर्ग का गोला देख रहा है और नरक को लात मार रहा है। चित्र देखता है, देखते हैं और चले जाते हैं। फिर भी ऐसे ऐसे मनुष्य आगे चल करके समझेंगे, ये तब समझेंगे जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा है? हमारा प्रभाव निकलेगा, शिव बाबा आया हुआ है तो शिव बाबा के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। शिव बाबा जो आया हुआ है वो भी तो प्रत्यक्ष आया हुआ है या गुप्त में है?
गुप्त
है, इसलिए प्रभाव को भी गुप्त रखा हुआ है। राजधानी स्थापन हो रही है तो जो राजधानी स्थापन हो रही है वो तो वृद्धि को पाती रहेंगे, तुम देखते भी हो वृद्धि होती रहती है, इसलिए बाबा मकान भी बढ़ाते रहते हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पावेंगे। राजधानी स्थापन होने में टाइम तो लगता है ना। मूल बात है कि हमको सत्व प्रधान बनने के लिए, पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है। अपनी जांच रखनी चाहिए, सारा दिन में हमने कितना समय बाप को याद किया और कितना रुचि से याद किया। बाबा कितनी सहज युक्तियां बताते हैं। अक्षर यह है सिर्फ मन मना भर, बल्कि गीता में अक्षर है परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। लाखों हजारों मनुष्य गीता आदि सुनते, समझते तो कुछ भी नहीं। हम भी गीता भागवत आदि सुनते थे, हर एक का अपना अपना शास्त्र है, हर एक धर्म वाले की अपने धर्म शास्त्र के प्रति प्रीति रहती है। यह गीता पढ़ते हैं, वहां क्राइस्ट है वो फॉलो करने वाले क्रिश्चियन बाइबल पढ़ते, वो जानते हैं कि क्राइस्ट कब आया, कहां गया, क्या हुआ। इन भारतवासियों ने तो अपना धर्म जाना ही नहीं। क्रिश्चियन ने तो अपना धर्म स्थापन किया, वो वृद्धि को पाता रहता है, चलता रहता है। ये कोई कमाल की बात हुई क्या? अभी समझो, यह ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, इसमें कमाल की बात क्या है? सभी धर्म वाले आते हैं, अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनकी वृद्धि होती रहती है, सभी की वृद्धि होती रहती है, इसमें कमाल की बात क्या हुई? वो कोई कमाल नहीं करते हैं, कमाल तुम बच्चे करते हो। शिव बाप की श्रीमत पर चल करके क्या कि पुराने सब धर्मों का विनाश और नए सब धर्म की स्थापना कर देते हो। शिव बाबा ना होता तो वापस जाने की युक्ति कोई भी नहीं बता सकता। जितने भी धर्म आते हैं वो अपने अपने पीछे पीछे और ढेर सारी जेंट्री लेकर के आ जाते हैं, कोई भी वापस जाने का रास्ता नहीं बताता। वो धर्म स्थापक तो वापस जाने की युक्ति बताते ही नहीं, तो उनकी महिमा कुछ भी नहीं है। इब्राहिम हो अथवा बौद्ध हो, उनकी महिमा तो कुछ भी नहीं। और ही इनके धर्म की आत्माएं मुक्ति में बैठी थी छुई, और उन मुक्ति में बैठी हुई आत्माओं को फिर जंजाल में फंसा देते हैं। वो फिर धर्म स्थापन करते हैं। तुम स्वर्ग में रहते हो, पहले तुम जंजाल में फंसे थे क्या? मुक्ति धाम में थे तो भी जंजाल नहीं कहेंगे? मुक्ति धाम छोड़ करके जब तुम सत्य को त्रेता में उतरते हो तो भी जंजाल तो नहीं कहेंगे? वो तो फिर और ही मुक्त आत्माओं को जंजाल में ले आते हैं। वो धर्म स्थापन करते हैं तो वो सब आत्माएं आती रहती है, बाकी मोक्ष आदि की तो बात ही नहीं है। चक्र में तो सबको आना है, पर जब दुख होता है तो गॉडफादर को पुकारते हैं। धर्म स्थापक को कोई गॉडफादर नहीं कहेंगे, वो तो एक ही है, क्योंकि फादर से वर्षा मिलता है, क्राइस्ट कोई वर्षा नहीं देते हैं। किस चीज का वर्षा देते हैं?
सुख शांति का।
क्राइस्ट
नहीं देते,
क्राइस्ट कोई वर्षा नहीं देते, ना मुक्ति देते हैं, न जीवन मुक्ति देते हैं। कितनी समझने की बात है। बाप जब समझाते हैं तो बुद्धि में हमारी प्रकाश हो जाता है कि जो किसी ने नहीं दिया वह बाप आकर के देते हैं। बाबा ज्ञान का सागर है, हमारे भी ज्ञान है, मन बुद्धि में प्रकाश आ गया है। ज्ञान सुन करके ही प्रकाश आता है, ज्ञान न सुना होता तो प्रकाश भी नहीं आता। पहली फरवरी सन 67 की वाणी का दूसरा पेज। अभी तुमको सृष्टि की आद में अंत का सारा ज्ञान है, ऊंचते ऊंचे बाबा है, फिर ऊंचते ऊंचे हम आत्मा है। नंबर 12 पहली फरवरी सन 67 की वाणी का दूसरा पेज। अभी तुमको सृष्टि की आद में अंत का सारा ज्ञान है, ऊंचते ऊंचे बाबा है, फिर ऊंचते ऊंचे हम आत्मा है। नंबर 12 ऊंचते ऊंच बाबा के साथ हम आत्माएं भी ऊंचते ऊंचे नंबर वाले कहां के वासी हैं वो तो तुम जानते हो, दुनिया में कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। बाबा ज्ञान का सागर है, वो सिर्फ गाते हैं ज्ञान का सागर। क्या गाते हैं? ज्ञान का सागर, और कहते हैं एक बूंद के प्यासे हम, और तुम तो ज्ञान सागर में नहाते हो। वो एक बूंद के प्यासे रहते हैं और तुम तो स्नान करते हो, डुबकी लगाते हो। तो जरूर तुमको कुछ सुना करके गए होंगे, उनको नहीं सुना के गए और तुमको सुना कर गए। तुम शिव जयंती भी मनाते हो, परंतु पहले ये नहीं जानते थे कब आया था, वो तो किसी को पता नहीं था। अभी तुमको पता है कि वो कब आते हैं। कब आते हैं? जब घोर अंधेरी रात ब्राह्मणों की हो जाती है, तब बाप घोर सोचना करने के लिए आते हैं। शिव बाबा आज से 5000 वर्ष पहले होकर के गए हैं, और राजयोग सिखा करके भारत को राज्य दिया था। फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा हो गया, फिर और कोई धर्म नहीं बचा। ये तुम जानते हो, ये तुम जो जानते हो वो बड़े बड़े विद्वान पंडित शंकराचार्य आदि नहीं जानते। कितनी उनकी महिमा है, परंतु उनकी इतनी महिमा तुम्हारे आगे तो कुछ भी नहीं रहेगी। जब तुम्हारी आत्मा संपन्न बनेगी, तुम प्रत्यक्ष होगे, तो उनकी महिमा सारी चट हो जाएगी। बल कितने भी बड़े बड़े राजाएं हैं, महाराजाएं हैं, तुम अभी समझते हो कि स्वर्ग के जो महाराजा महारानी थे, उनके मुकाबले तो उनकी कोई भी मान्यता नहीं रह जाएगी। यहाँ तो सभी महाराजा महारानी प्रेसिडेंट आदि सब नरकवासी है। जो भी मनुष्य मात्र है सब नरकवासी है। स्वर्गवासी व शांतिधाम वासी बनने का उनको पता ही नहीं है। ये भी नहीं जानते हैं कि हम नरक में हैं। हैं? अगर जानते होते तो इस दुनिया को स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ न करते। गांधी जी क्या चाहते थे? राम राज्य आए। पुरुषार्थ तो किया ना राम राज्य का, फिर क्या हुआ? और ही राम राज्य हो गया। मनुष्य मेलमाड़ियां अटारियां बनाते रहते हैं, किस लिए बनाते हैं? है? कि सुख शांति बढ़े। बजाय सुख शांति बढ़ने के और भी क्या होता जाता है? और ही सुख अशांति बढ़ती जाती है, मन उदास होता जाता है। ये मनुष्य मात्र सब नरकवासी है। स्वर्ग क्या चीज है किसी को कुछ भी पता नहीं है। अभी आत्मा का तीसरा इत्र ज्ञान का तुम्हारा खुल गया है। आत्मा ने बाप को जाना है, आत्मा को बाप से सृष्टि की आदिमत का ज्ञान मिला है। धारणा तो नंबर वार हो रही है। कोई जास्ती धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। क्यों? उनको कम धारणा होती है, कोई को जास्ती धारणा होती है। इसका कारण क्या?
श्रीमत पर नहीं चल पैसते
नहीं
है?
त्रेसठ जनों के संस्कार है, माने पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं
है। पता नहीं है,
पता नहीं है
क्या क्या कर दिया है।
जो सर्विस की फील्ड में जितना जास्ती रहेंगे, उनको धारणा जरूर होगी, उनका मन चिंतन मंथन भी चलता रहेगा। और सर्विस फील्ड में नहीं रहेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। दूसरों को सुनाएंगे तो खुद की बुद्धि में भी धार होता रहेगा। तो अभी आत्मा का तीसरा नेत्र खुल गया है। बोला किसने? शिव बाबा को एक नेत्र है, तीन नेत्र है। तीन नेत्र कैसे है? शिव को नेत्र होते हैं? शिव जिसमें प्रवेश करता है तो उसको तीन नेत्र होते हैं। तीन नेत्र कौन कौन से? शिव को स्थूल नेत्र होते हैं या वैर के नेत्र होते हैं? हम सबको तो स्थूल नेत्र है ये, और शिव को है ज्ञान के नेत्र है। कौन कौन से तीन नेत्र है? हाँ, ये माता ने बताया, राम कृष्ण, ये दाई और बाई आंखें हैं, और तीसरा नेत्र वो स्वयं आत्मा है। जो शिव नेत्र है वो सदैव खड़ा हुआ है। राम कृष्ण की आत्मा है, राम की आत्मा यज्ञ के आदि में फेल हो गई तो नेत्र पड़ गया या खड़ा रहा? है पड़ गया। तो राम कृष्ण की आत्मा है, वो जो नेत्र दिखाए गए हैं वो पड़े हुए नेत्र हैं, और शिव का नेत्र सदैव ही खड़ा हुआ नेत्र है। तो तीन नेत्र हैं अलग अलग, तीनों की क्वालिटी अलग अलग है। एक दाया नेत्र, एक बाया नेत्र। दाया नेत्र क्या करता है? गुण देखता है। जो दाया नेत्र है वो शुभ कार्य करता है, अशुभ कुछ भी नहीं करता, क्योंकि गुण देखेंगे तो अपने अंदर भी क्या आएगा? गुण ही आवेंगे, और अवगुण देखेंगे दूसरों के तो अवगुणों में गोते खाते रहेंगे। अवगुणों में गोते खाएंगे तो खुद भी क्या होगा? हाँ, नीचे गिरे। तो कौन सा नेत्र बढ़िया हुआ? दया नेत्र बढ़िया हुआ। और बाया नेत्र बहुत खुश हो रहा है और बाया नेत्र वो भी श्रेष्ठ हुआ। क्यों? वो अवगुण देखता है तो नुकसान होगा या फायदा होगा? वो करेक्ट कर सकता है बाया नेत्र। वो बाया नेत्र अगर किसको देखता, बाया नेत्र अगर करेक्ट कर सकता होता तो 63 जन्म में भी करेक्ट कर लेता है। गुण अवगुण दोनों से बाया नेत्र। बाया नेत्र माने राम वाली आत्मा, जो बाया नेत्र है बाबा का, बाया नेत्र है बाबा को, तो अपना नेत्र नहीं है, तो बच्चों के द्वारा ही तो वो देखता है। तो मेरे नूर रतन हो, नूर हो मेरी आंखों के, क्या हो? नूर हो मेरी आंखों के तारे हो। तो दाई और बाई दो आंखें हुई, उनमें एक आंख हुई ब्रह्मा और दूसरी आंख हुई राम वाली आत्मा। तो एक बाया नेत्र है, एक दाया नेत्र है, दोनों नेत्रों से कल्याण होता है, दाया नेत्र से भी और बाया नेत्र से भी। कल्याण तभी होता है जब दोनों में बैलेंस आ जाता है। चाहे ब्रह्मा का दाया नेत्र हो, कल्याण हुआ है? गुण देखते देखते शरीर छूट गया, कल्याण हुआ? नहीं हुआ। और अवगुण देखते देखते सारा संगम युग बीत गया, कल्याण नहीं हुआ। फिर कैसे कल्याण हुआ? है जब बैलेंस आ जाए, तो बैलेंस आने से कल्याण होता है। तो ये किसी को पता नहीं है इस बात का कि वो शिव कब आया, बाप बनकर के कब आया है, और मां बनकर के कब आया, और संपन्न शिव कब आया, संपूर्ण कब आया, अधूरा आया, संपूर्ण आया। आया माने प्रत्यक्ष होना, और गुप्त रहा माने प्रत्यक्ष नहीं हुआ। आया और नया आया बराबर हो गया। आया तब कहे जब सबको पता चले। तो तुम्हारे आगे ये विद्वान पंडित आचार्य कोई चीज नहीं है, क्योंकि उनको त्रिनेत्री अभी तक नहीं मिला हुआ। यहां तो सभी महाराजा महारानी प्रेसिडेंट आदि सब नरकवासी, किसी को पता नहीं है। तीसरा नेत्र तुम्हारा खुल गया है, षष्ठ के आदिमध्यंत को ज्ञान में तुमने धारण किया है। तो धारणा नंबर वार होती है, कोई जास्ती धारण करते हैं, कोई कम करते हैं, पुरुषार्थ तो करते रहेंगे, करते रहेंगे। माना जब तक जीना है तब तक पीना है। वो स्कूल जो होते हैं वो गांव में होते हैं, फिर बड़े बड़े इम्तहान पास करने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, कहीं जाते हैं ना, ट्रांसफर होते हैं ना। ये तो एक ही स्कूल है, क्यों यहां ट्रांसफर नहीं होता है? बेसिक नॉलेज से एडवांस नॉलेज में ट्रांसफर नहीं होता होता है, फिर एक ही स्कूल क्यों कह दिया है? बेसिक में भी आज में तुम्हें वो ही पढ़ाता था, और एडवांस में भी तुम्हें अभी भी वो ही पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाला एक ही है। दुनिया को तो कुछ पता नहीं है, आस्ते आस्ते अभी ये स्कूल खुलते जाते हैं। तुम लिखते हो सच्ची गीता पाठशाला, क्या सच्ची गीता पाठशाला तो भी वो नहीं समझते? अरे हमने सच्ची गीता पाठशाला लिख दिया, फिर क्यों नहीं समझते? और ही नाराज होते हैं, ये क्या हमारी गीता पाठशाला है जहां गीता ज्ञान सुनाया जाता है वो सब झूठी हो गई, और यानी कि सच्ची गीता पाठशाला हो गई? उनकी बुद्धि में आता ही नहीं कि सत्य साईं बाबा इनको पढ़ाता है, वो सत्य साईं बाबा पढ़ाता है तो सत्य को आता है, सत्य बात बता करके कौन सी युग की स्थापना करता है? सत्य युग की स्थापना करता है। और दुनिया में जो गुरु गुसाई है वो सब झूठी बातें सुनाकर झूठ खंड की स्थापना कर रहे हैं। दुनिया झूठ बनती जा रही है या सत्य बनती जा रही है? झूठ छल छिद्र कपट बढ़ता जाता है या घटता जाता है? बढ़ता जाता है। कुछ भी नहीं समझते, वो जानते नहीं है कि यहां सच्चा बाप आकर के खुद पढ़ाते हैं, वो सब झूठे किताब बना करके पढ़ते रहते हैं। एम आप जैसे कुछ भी नहीं है यहां, तो देखो तुम्हारी एम आप जैसे है, तुम कह सकते हो ये हमारी एम आप जैसे है? बहुत आगे चल करके सुनेंगे, जो सुनेंगे वो प्रजा बनते जाएंगे। प्रजा बननी तो है ना कि नहीं बनेगी? कौन से जन्म की प्रजा बनेगी है? फर्स्ट जन्म की प्रजा बनेगी तो जरूर, राजा रानी जो बनते हैं उनकी फिर माला बनती है। तो असली प्रजा कब निकलेगी है? पहले माला बनेगी या पहले असली प्रजा निकलेगी? पहले माला तैयार होगी, जब माला तैयार होगी फिर उन माला के दानों के द्वारा जिनकी सेवा होगी वो प्रजा तैयार होगी। प्रजा भी सच्ची होगी और वो माला के दाने भी सच्चे होंगे। माला 8 की भी है और 108 की भी है, फिर 16108 की भी है, तो कितने ग्रेड्स हो गए मालाओं में? 3 ग्रेड्स, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास माला। अब 16108 की इतनी बड़ी माला कैसे उठा सकेंगे? बड़ी भारी मुसीबत आ गई, इतनी बड़ी माला कैसे उठावेंगे? इसलिए 108 की छोटी माला बनाई। क्यों मंदिरों में 108 की माला उठाई नहीं जाती है? जो पुराने पुराने बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें एक गरारी टंगी हुई होती और उसमें माला चढ़ी हुई होती, एक तरफ मड़के पड़े रहते हैं दूसरी तरफ पड़े रहते हैं, और दो दो चार चार आठ आठ दस दस लोग मिल करके उसको खींचते हैं। वो काम किया गया कैसे है?
हाँ,
पहले बाबा अकेले निकलते थे, अकेले एक को बैठ सुनाते थे। अभी बाबा कहीं अकेले जाते हैं क्या? क्यों हैं? अकेले निकलते थे तो जो सबसे छोटी श्रेष्ठ माला है कौन सी? आठ की माला। उन आठ की माला में अकेला दाना प्रत्यक्ष होता था। फिर जब अनेकों के साथ संगठित होकर के सेवा करते हैं तो फिर उसका माला का रूप बढ़ जाता है। भक्ति मार्ग में जो साधु सन्यासी होते हैं बड़े बड़े गैंग बना करके चलते हैं, वो फाउंडेशन कहां पड़ता है? यही फाउंडेशन पड़ता है। 16,000 की जब माला बननी होगी तो 10-10 5-5 इकट्ठे होकर के निकलेंगे। अभी अकेले कहीं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में घुस जाओ तो मार पिटाई कर देंगे। 10-15 इकट्ठे होकर के जाएंगे तो वो संभावना नहीं रहेगी। तो ये सब हिसाब यहां का बना हुआ, फाउंडेशन यहां का पड़ा हुआ। पहले पहले अकेले एक को समझाते हैं तो श्रेष्ठ राजाएं बनते हैं। अनेकों को हुजूम में समझाया जाता है तो प्रजा बनती है। तो क्या करना चाहिए? इंडिविजुअल समझाना चाहिए। और इंडिविजुअल समझाओ और वो सुने ही नहीं है, और एक बार समझाना फिर तुम्हारे कुल के होंगे वो है। जो तुम्हारे कुल का होगा हमारे कुल का होगा तो क्या एक ही बार में समझेगा या बार बार समझाने समझेगा? वो तो एक ही बार में समझ जाएगा तो हमें पता लग जाए ये हमारे कुल का है। हमारे कुल का नहीं होगा तो बार बार उसको मेहनत करते रहो वो समझेगा नहीं। फिर भी जब माला तैयार हो जाएगी माना संगठन तैयार हो जाएगा तो प्रजा तो निकलेगी लेकिन वो फर्स्ट क्लास प्रजा निकलेगी। पहले नंबर की जो प्रजा निकलेगी उस प्रजा की भी कोई खसूसियत होगी जो और जन्मों की प्रजा में वो खसूसियत नहीं होगी। वो प्रजा कभी कन्वर्ट होने वाली होगी क्या? वो प्रजा भी कन्वर्ट होने वाली नहीं होगी। जीते जी कन्वर्ट होने वाली नहीं होगी। तो राजा रानी जो बनते हैं उनकी तो माला बनती है, माला 8 की, 108 की, 16,108 की। बड़ी माला उठाई नहीं सकते इसलिए 108 की छोटी बनाई। ये 108 तो बहुत कम, आधा कल्प में वृद्धि तो होगी ना, राजाओं से भी वृद्धि होगी। परंतु हैं तो सब पवित्र। भले पहले एक बच्चे का साक्षात्कार होता है परंतु रावण राज्य तो नहीं है ना, विकार की तो बात ही नहीं रहती। रावण राज्य शुरू ही होता है द्वापर युग से। कौन से युग से? क्या नाम रख दिया? गोकुर। गोकुर माना अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग प्रोविंस कर लेते हैं तो अलग अलग राजधानी हो जाती है, गोकुर हो जाते हैं। जब गोकुर हो जाते हैं तो दो भाषाएं भी हो जाती, उनकी भाषा अलग, उनकी भाषा अलग, उनका धर्म अलग, उनका धर्म, उनका मत अलग, उनका मत अलग। तो द्वापर युग से रावण राज्य आता है। तुमको समझाने की पॉइंट बहुत मिलती है। आधा है रावण राज्य, आधा है राम राज्य। राम राज्य में पवित्र रहते साक्षात्कार करके दो का भी हो जाएगा, तीन का भी हो सकता है। कब की बात? बच्चा जब पैदा होता है तो दो का भी साक्षात्कार होगा और कोई कोई को तीन चार बच्चे भी होंगे, होगा एक बच्चा एक बच्ची करके तीन चार भी हो जाते हैं। परंतु विकार की बात नहीं है। तीन चार क्यों हो जाते हैं? दो से दो ही हो तो क्या होगा? तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। फिर भी बेकार की बात तो नहीं, तो बोलो वहां है योग बल। रावण राज्य शुरू हुई द्वापर आदि से होता है, त्रेता का अंत और द्वापर की आदि। वहां कोई पुरुषोत्तम संगमी को नहीं होता है, क्यों? पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं कौन कौन है वो वहां पता नहीं लगता। वो तो पुरुषोत्तम से कनिष्ठ बन जाती है। पुरुषोत्तम माने देवता है, पुरुष माना आत्मा। आत्माओं में जो उत्तम पार्ट बजाने वाले होते हैं वो है देवता है, और जो कनिष्ठ पार्ट बजाने वाले होते हैं वो है मनुष्य अथवा दैत्य। तो पुरुषोत्तम से कनिष्ठ युग होने का द्वापर युग है, उनका गायन नहीं है। राम राज्य में रावण राज्य की बात ही नहीं हो सकती है। दुख शुरू होता है रावण राज्य के बाद, बात हुआ था सुख है, ये है ही सुख और दुख का खेल। उसमें से तुम बच्चों के लिए सुख बहुत है, उन बच्चों के लिए नहीं, किन बच्चों के लिए है? उन बच्चों किसके लिए बोला और तुम बच्चों किसके लिए बोला?
तुम बच्चों अपने लिए बोले और उन बच्चों ब्रह्मपुरम।
मैं आकर के सूर्य को ज्ञान देता हूं, तो सूर्यवंशी बच्चों के लिए बोला तुम, और बाकी कौन बचे? चंद्रवंशी। उन चंद्रवंशी में इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन साहब वहां रहबरी में पलते हैं। किसकी रहबरी में पलते हैं?
चंद्रमा
की रहबरी में पलते हैं। तो उनके लिए बोला, उनके लिए सुख आधा आधा है और तुम्हारा सुख तीन चौथाई है। पीछे पीछे आहिस्ते आहिस्ते करके दुख शुरू हो जाते हैं, कलाएं कम हो जाती है ना। जब बाप आते हैं तो मनुष्यों की कोई भी कला नहीं रह जाती। जो भी आते हैं पाठ बजाने वो भी थोड़े समय के लिए। बाप के आने के बाद जो भी आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वो कितना समय पाठ बजाती है?
थोड़ा समय,
ज्यादा जन्म पाठ थोड़े बजाती, ज्यादा से ज्यादा एक दो जन्म। जानवरों में भी कोई की आय छोटी होती है, कोई की बड़ी होती है। कुत्ते की आयु कितने साल होती है? 10 साल, 15 साल, ज्यादा आयु नहीं होती। दीपमाला में रात को जन्मते हैं मच्छर, और सवेरे को देखेंगे तो ढेर सारे बड़े बड़े होते हैं। वो मच्छर होते हैं या पतंगे होते हैं? है? पतंगे। उनको बाबा ने नाम क्या दिया है? मच्छर। बत्ती जलने का समय हुआ तो उनका जन्म हो जाता है, फिर रात को खत्म हो जाते हैं। मनुष्यों का भी ऐसे ही होता है। लेकिन ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं क्या, कि कोई कोई मनुष्य भी मच्छर मिसल है, कोई कोई मनुष्य भी जानवर मिसल है, कोई शेर जैसा पार्ट बजाने वाले हैं, कोई गधे जैसा पार्ट बजाने वाले हैं, कोई मगरमच्छ जैसा पार्ट बजाने वाले हैं। इन बातों को धारण करना है और औरों को धारण कराना है। प्रैक्टिस होगी तो सब पॉइंट्स बुद्धि में बैठते रहेंगे। कोई कोई तो प्रदर्शनी में आकर के फिर अपने धंधे में चले जाते, अपने धंधे में चले जाएंगे तो वो नशा खत्म हो जाएगा। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि 9-10 वर्ष है। कौन से सन में बोला है? 67 में, 67 में ये सब खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो गया?
एक के लिए खत्म हो गया,
एक के लिए खत्म हो गया और बाकी सबके लिए रह गया है। सब जिंदा है, जिंदा माने निश्चय बुद्धि है, वो सब जिंदा है?
नहीं, नहीं।
सन 76 के बाद जो भी जिंदा है वो सब जिंदा है या मरे हुए के समान?
मरे हुए के समान,
मुर्दे हुए पड़े हैं। अगर इतना ज्ञान मिला और ज्ञान में बुद्धि नहीं चलती है तो मुर्दे हुए या जिंदा है?
मुर्दे
हुए। ये सब खत्म हो जाएंगे। जो सत्युग में राज्य था वही राज्य अभी स्थापन हो रहा है। जो सत्युग में थे वही रहेंगे और बाकी सब सब खलास हो जाएंगे। हम उनके राज्य में थे, इनके राज्य में लक्ष्मी नारायण के राज्य में हम थे और हम ही फिर रहेंगे। यज्ञ के आज में भी हम ही थे और अब अंत में भी हम ही बचेंगे। माना यज्ञ के आज में भी कोई लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं थी, हम उनकी रहबरी में अपने पालना ली थी और अंत में फिर भी हम पालना लेंगे। फिर सतुरज तमो में आए। ये 84 जन्म का चक्कर है, ये सारा चक्कर तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। क्या सारा चक्कर तुम्हारी बुद्धि में क्यों बैठ गया है? उन सबकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठता?
84 जन्म लेते नहीं,
उन्होंने पूरे 84 जन्म लिया ही नहीं है तो उनकी बुद्धि में पूरा चक्कर बैठता ही नहीं। तुम कितना भी समझाओ कि आखिर राधा कृष्ण का जन्म कैसे होगा तो उन्हें ये जानने की जिज्ञासा नहीं होगी। अब तुमको ये जिज्ञासा होती है कि राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म कैसे होगा, तो जिसने रसगुल्ला खाया होगा उसको रसगुल्ले की याद आएगी, जिसने खाया ही नहीं और याद भी क्यों आएगी? उनकी आत्मा में वो संस्कार नई दुनिया स्थापन करने के नहीं है। तो तुम जानते हो, तुम फिर संस्कार ले जाएंगे क्या? नई दुनिया स्थापन करने के संस्कार तुम्हारे हैं, तुम निर्माण करने वाले हो तो निर्माण बन करके तुम नई दुनिया का निर्माण करेंगे। तुम्हारे अंदर ये संस्कार हैं, बाद में फिर ये सारा ज्ञान लोप हो जाएगा। नई दुनिया स्थापन हो जाएगी और ये सारा ज्ञान लोप हो जाएगा। अभी तुमको ज्ञान मिलता है, जितना जितना जिसको ज्ञान मिलता है उतनी उसकी उसकी सदगति होती जाएगी। फिर भक्ति के धक्के खाने की भी जरूरत नहीं। मनुष्य कितने घोर अंधेरे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। कोई शहर में 6 मास का दिन और 6 मास की रात भी होती है, ऐसा शहर कौन सा है? वो शहर है,
खंड
है, वो तो खंड है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां तो बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, वहां शहर होने का सवाल ही नहीं। फिर बाबा ने शहर क्यों कह दिया है? बाबा बेहद में बोलते हैं, हद में बोलते हैं? बेहद में बोलते हैं। तो कोई शहर में 6 मास का दिन 6 मास की रात होती है, फिर ये बातें सच हैं या झूठ हैं ये कुछ कह नहीं सकते। ऐसा कोई मनुष्य देखकर आया नहीं है क्या? जहां दिन ही दिन रहता हो अथवा जहां रात ही रात रहती हो, ऐसा कोई मनुष्य देखकर आया नहीं है जो आकर के सुना ले। दिन माने ज्ञान की रोशनी ही रोशनी और रात माने अज्ञान का अंधेरा ही अंधेरा। तो कोई कहते हैं अज्ञान का अंधेरा कायम रहेगा, तो अज्ञान का अंधेरा जहां कायम है तो रात हुई कि दिन हुआ? रात है। और जहां ज्ञान का सवेरा ही सवेरा हो, कोई बात में अज्ञान का अंधेरा होता ही ना हो, तो ऐसा कोई शहर होगा? सन सिटी नहीं होगा?
होगा,
सन सिटी होगा। ये सन सिटी की बात तो पहले नहीं थी, अभी सारी दुनिया में ये चल पड़ा। इसलिए बाबा ने कहा ऐसा कोई मनुष्य देख करके आया नहीं है जो आकर के सुनावे। ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये सच है या झूठ है अभी कुछ कह नहीं सकते। माना उस समय की बात ये नहीं थी और अभी ये बात होनी है। ओम शांति।